ओम शांति। सभी ने बच्चों का बहुत सुंदर डायलॉग सुना, पूरे मधुबन की सैर कर ली। सभी दादियां सामने आ गई ना, ये भी एक बहुत अच्छी कला है। माँ बाप बच्चों को कई ज्ञान के गहरे राजों से, कई बातों से ट्रेंड कर देते हैं। सबका मनोरंजन भी हुआ और साथ साथ ज्ञान सरोवर, जहाँ पर आप सभी बहुत अच्छी एकांत की तपस्या करने आए हैं, दुनिया के वातावरण से दूर, बाबा ने ऐसा स्थान बनाया है जहाँ पर कोई भी ब्राह्मण आत्मा अपनी बहुत अच्छी चेकिंग कर सकती है। मेरी क्या स्थिति है, मैंने कहाँ तक अपने आप को बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनाया है, जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी स्थिति का अनुभव कराते थे और अंत मत्ती सोगति कर्म में रह करके वो स्थिति प्राप्त कर ली। कर्म का त्याग नहीं किया, अंत तक भी शरीर के द्वारा कर्म करते, कर्मयोगी स्थिति से कर्मातीत बन गए। हम सब बच्चों को भी यही ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे, अंतकाल का तो कोई भरोसा नहीं है, किस समय किसका अंत शरीर का होगा कह नहीं सकते, अचानक ही हो रहे हैं वो सब। आप सभी देख रहे हो, सुन रहे हो, कैसे न मन न चित्त एकदम एक मिनट में क्या से क्या हो जाता है। हम सबको अंतमत्ति का ज्ञान रहता है, ध्यान रहता है कि बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम समय के संकल्प आपकी गति और सदगति के निमित्त बनते हैं और अंतिम समय में एक बाबा की ही याद रहे। देह संबंध वस्तुएं पदार्थ संस्कार कुछ भी याद ना आए तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसलिए हम सबको इस बात पर बहुत ध्यान देना है। ऐसे नहीं ठीक है जब शरीर छोड़ेंगे तब बाबा याद आ जाएगा, इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिस बात का ध्यान बहुत काल से होता है वही अंत काल में सामने आता है। भले आप हम सभी 20 साल 25 साल 30 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन अगर बहुत समय ज्ञान और योग के ऊपर ध्यान नहीं रहा है, अपने ही लौकिक कार्यों में संबंधों को निभाने में सदा ही बिजी रहे हैं, केवल एक आधा घंटा गए मुरली सुन ली क्लास कर ली, तो इससे संस्कार नहीं बनते। और ऐसे अचानक कोई अंतकाल आएगा तो उस समय बाबा याद आए मेहनत है, नहीं याद आएगा। जहाँ पर भी बहुत समय का संबंध रहा है, जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति से बहुत स्नेह रहा है, वही अंत समय में याद आता है। इसलिए बहुत ध्यान देना कि अंतमत्ति सोगति, अंतकाल में एक बाबा की याद आए, कोई भी याद ना आए, उसके लिए हम सबको कर्म योगी बन करके रहना है। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर कर्म संन्यास तो हम कर नहीं सकते। बाबा ये शब्द बहुत करेक्ट कराते हैं बच्चे, कर्म संन्यास नहीं होता। कोई भी कहे मैं कर्म संन्यासी हूं तो उससे पूछो तुम खाते हो पीते हो रहते हो, चलते फिरते बोलते हो, ये क्या कर्म नहीं है? ये भी तो कर्म ही है। कर्म क्षेत्र पर कोई भोजन न बनाए अपने लिए, कोई चूल्हा न जलाए और कहे मैं कर्म सन्यासी बन गया, तो कर्म सन्यासी नहीं है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है कर्म सन्यास नहीं होता, लेकिन कर्म योगी जीवन होती है। कर्म में बाबा की याद निरंतर बनी रहे तो अंत समय कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो बाबा अंतमति सोगति कहते अंतकाल जो हरि को सुमिरे, उसी का ही जन्म श्री नारायण का बनेगा। बाकी अगर कोई भी देहधारी की याद आ गई तो बुद्धि भटक जाएगी और उसी अनुसार उसका जन्म होगा। इसलिए आज का ये जो विषय है बहुत गहरा है और बहुत चिंतन करने का है कि हम सब सारे दिन में कोई न कोई कर्म तो कर ही रहे हैं, जागते सोते कर्म तो चलता ही रहता है, सब कॉन्शियस माइंड में भी आत्मा कुछ न कुछ करती रहती है। कुछ समय हो सकता है डेड साइलेंस हो जाती हो, उस समय कर्म शांत हो जाएं, लेकिन जब हम सोते हैं तभी भी सपनों में कहीं न कहीं सैर करते हैं, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इसलिए कर्म योगी आत्मा सदा ही उस योग की स्थिति में रहे, उसके लिए मैं कुछ बातें आपके ध्यान पर देता हूं कि अगर हम सब भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं और उसमें ध्यान है कि हम बाबा के साथ रह करके कर्म करें, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे आप कर्म करता नहीं हो, कर्म करो लेकिन ये स्मृति न रहे मैंने कर्म किया, कराने वाले ने करा दिया। करावनहार हमारा बाबा है और उसने हमें निमित्त बनाया है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अगर ये स्मृति रहती है कि वो निमित्त बना करके कराने वाला करा रहा है तो हाथों से कर्म हो रहे हैं लेकिन दिल बाबा में लगी हुई है। कहते ये दिल यार दे हाथ काट दे, हाथों से काम करो लेकिन दिल से बाबा को प्यार करो, याद करो। तो हम सभी कर्म करते हुए भी डबल स्मृति रहती है कि करावनहार बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके श्रेष्ठ कार्य करा रहे हैं, और दूसरी स्मृति ये रहती है कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के करावनहार बन करके कर रही हूँ। ये इंद्रियां करनहार हैं, मैं आत्मा करावनहार हूँ। और जब इस स्मृति में कर्म करते हैं, कर्म कोई भी हो, छोटा बड़ा कर्म नहीं होता। कई बार बाबा कहते हैं कोई कोई सोचते हैं क्लास कराएं, भाषण करें, कोर्स कराएं, यही कर्म श्रेष्ठ कर्म है संगम युग पर। लेकिन बाबा की मुरलियों में कभी कभी सुना होगा, चार पांच दिन पहले भोली दादी की बाबा विशेषता सुना रहे थे। भोली बच्ची ने कितना यज्ञ की, कर्मणा सेवाएं की, उसका भी बड़े बड़े महारथियों से भी आगे नाम है। कर्मणा सेवा करते हुए कभी भी उन्होंने मुरली में क्लास में जाना है या भाषण करना है या कहीं कुछ करना है स्टेज पर, किसी के सामने नहीं आई। लेकिन एक भंडारे की सेवा में सदा ही जो वीआईपी, जो भाई बहने आए उनकी प्यार से पालना की, बहुत प्यार से, लाड़ प्यार से जैसे पाला। कभी भी कोई को कोई चीज की आवश्यकता हो और भोली दादी को पता चल जाए तो वो उसी समय उसको उपलब्ध कराना है, देना है। ये नहीं कह नहीं है, नहीं होगा, नहीं बैठो तुम, मैं करके देती हूँ। ऐसी कर्मणा सेवाएं उन्होंने की यज्ञ की जो सबके दिलों पर उनका नाम आ गया, सब उनको प्यार करने लगी। बाबा, मम्मा, दादियां, भोली दादी, बस वो बैठी है भंडारे में, सब निश्चिंत हैं। हमारी दादी जी कभी कभी मुरली सुनाते सुनाते अचानक कह देती थी भोली सुन रही हो भंडारे में, आज थोड़ी ठंडी पड़ रही है, गरम गरम हलवा बना दो। मुरली पूरी हुई और हलवा हाथ में आ जाता था। बरसात पड़ने लगी तो दादी जी को कुछ न कुछ नया नया उमंग आता था। अरे आज इतनी अच्छी बरसात पड़ रही है, भोली सुन रही हो, पकौड़ा बना दो, गरम गरम पकौड़ा बन जाएंगे। वो नहीं ये सोचती थी दादी, देखो 5-10 मिनट आधा घंटे के अंदर कहती पकौड़ा बना के ले आओ क्लास में, हलवा बना के ले आओ क्लास में। नहीं, दादी ने वहां बोला, स्टेज पर मुरली सुनाते समय बोल दिया और भोली दादी एकदम एक्यूरेट, हाँ जी हाँ जी, उसी समय करना। तो आप समझ सकते हो कि कर्मणा सेवाओं से उसने कितनी दुआएं जमा कर ली। तो कर्म करते हुए यही तो बड़ों की बाबा की दुआएं मिलती जाएं। कई बार कहते हैं तुम बच्चे बाबा को याद करने की मेहनत करते हो, लेकिन कभी ये सोचते हो कि बाबा मुझे याद करे, बाबा भी मुझे याद करे ना, तब तो हम कर्मयोगी हैं। हम ही मेहनत करते रहें, हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो बाबा के वाह बच्चे वाह बच्चे वाह बच्चे, तो डबल योग हो जाएगा। बाबा हमें याद करें, हम बाबा को याद करें, मेहनत ही नहीं लगेगी। इसलिए कर्म कोई भी हो, लेकिन बहुत लगन से बहुत दिल से अपना समझ करके किया जाए, और बाबा के प्यार में, बाबा ने आप मेरा भाग्य बनाने के लिए सेवा दी है, जो सेवा कर सकते हो कर लो, कल किसने देखा। मैं हमेशा एक बात ध्यान पर रखता हूँ, अगर आज मेरा शरीर ठीक है स्वस्थ है, हम अभी नहीं करेंगे, कल कोई कारण बन जाए, हम सेवा करने की बजाय सेवा लेनी पड़ जाए, तो फिर पश्चाताप तो ना, वो हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे ऊपर तो बोझ चढ़ रहा है। तो अगर तन स्वस्थ है तो तन से खूब सेवा करो, बाबा की याद में प्यार में, बाबा आप कितने अच्छे हो जो मुझ आत्मा को यूज कर रहे हो, ये तन आपकी सेवा में लग जाए। अगर मन अच्छा है तो कम से कम अच्छे अच्छे संकल्प करके अच्छा वातावरण बनाए, मन मना भाव बाबा की याद में रह करके शुभ चिंतक वृत्ति से शुभ भावनाएं रख करके वायुमंडल को शक्तिशाली बना दें, उससे आत्माएं आएंगी, उनको अच्छे अनुभव होंगे। अगर धन बाबा ने दिया है तो बाबा के कोई अच्छे काम में लग जाए, कोई इधर उधर जाएगा तो उसका बोझ चढ़ जाएगा। बहुत ध्यान देना, धन का दान करने वाले कभी कभी सोचते नहीं हैं कि इसका भी कोई हिसाब किताब बनता है। अगर मान लो अभी कल एक भाई मेरे साथ बैठा था कि मेरे अंदर इतना रहम का भाव है, इतना संस्कारों में भरा हुआ है कि अगर मेरे सामने कोई आए और कहे मुझे 50,000 की जरूरत है, तो मैं बिना सोचे समझे उसको ऐसे ही दे देता हूँ। मैंने कहा भाई तुम दे तो देता है, फिर लेने की आस रहती है? बोला हाँ, रिटर्न नहीं करता तो संकल्प चलते हैं। भाई उसने मांगा, हमने समय पर उसको दिया, तो उसको रिटर्न तो समय पर करना चाहिए। तो हमने कहा तुमने दिया और उसने नहीं दिया तो तुम्हारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो ऐसा पैसा क्यों दे रहे हो किसी को। बहुत कुछ बाबा ने सिखाया है कि धन को भी कहाँ पर लगाना है, कैसे यूज करना है। अगर ऐसे जगह पर आपका पैसा चला गया जिससे वो कोई गलत काम कर रहा है, जिससे कोई पाप हो रहा है, तो उसका हिसाब, उसका भी दंड आपको भी हिस्से में मिलेगा। इसलिए इतनी कर्मों की गहन गति बाबा ने सिखाई है। कर्म योगी हम ऐसे नहीं बन सकते अगर कर्म में श्रेष्ठता नहीं है, कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो वो कर्म योग लगने नहीं देंगे। योग कोई सहज बात नहीं है। कर्म योगी आत्मा वही रह सकती है जिसके हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो रहे हों। जो बाबा ने श्रीमत बताई है, कैसे अपने संकल्पों को यूज करो, कैसे अपने तन को यूज करो, कैसे अपने धन को यूज करो। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ये 6 विधियां हैं अपने कर्म के साथ योग जोड़ने की। अगर बाबा को साथी रख करके हम मनसा सेवा कैसे करेंगे? कई कहते हैं हम मनसा सेवा करते हैं, है तो अच्छी बात, बहुत अच्छा है। हमें कई बार हम पूछते हैं आपको कौन सी सेवा पसंद है, कहते मनसा सेवा बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सेवा के लिए क्या चाहिए? सेवा के लिए शक्ति चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि भाई ये 4 बाल्टी पानी यहां से यहां पहुंचा दो, तो आप पहले कहेंगे मेरा तन मेरा शरीर मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मैं बाल्टी उठा के यहां से वहां नहीं ले जा सकता। बल है, शक्ति है, तो आप फटाफट वो कार्य कर लेंगे। इसलिए देखना ये, अगर मनसा सेवा मुझे अच्छी लगती है तो क्या मन मेरा इतना शक्तिशाली है, मन हमारे कंट्रोल में है, जहां पर उसको ले जाना चाहें, जो उसको संकल्प देना चाहें वही संकल्प चलते हैं। अच्छा चलो, हमारे पास मनसा शक्ति है भी, तो भी बाबा कहता है इतने समय से चंचल मन, भिकारी मन, भटकता हुआ स्वार्थी मन क्या सेवा करेगा। इसके साथ अगर बाबा जुट जाएगा तो बाबा की वो शक्तियां यहां से प्रवाहित होंगी। हम बाबा में अपने संकल्पों को एकाग्र करें और बाबा की शक्तियां यहां आए और वो चारों तरफ सेवा करें। ये मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। लेकिन लोग समझते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं, मनसा सेवा करते हैं, बैठे एक घंटा हमने इसको योगदान दिया, इसको योगदान दिया। तुम्हारे पास योग की शक्ति है जो तुम दान करोगे, उसके लिए तो पहले आपका योग बाबा के साथ यथार्थ होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, लिंक होनी चाहिए। लिंक नहीं है और हम कहते हैं हम योगदान दे रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, मन भटक रहा है इधर उधर, बैठे हैं एकांत में, ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, हम एकांत में बैठे हैं, हम सोच रहे हैं हम बाबा इसको योगदान दे रहे हैं, सृष्टि को योगदान दे रहे हैं, प्रकृति को योगदान दे रहे हैं, इस व्यक्ति को योगदान दे रहे हैं, लेकिन मन चंचल है, मन भटक रहा है, शुभ भावनाएं नहीं है, स्वार्थ की भावनाओं से कोई योगदान दे, ये भाई ज्ञान में चलेगा, ये ठीक हो जाएगा, तो ये मदद करेगा, ये सहयोगी बनेगा, ये जमीन दिला देगा, ये मकान बनवा देगा, क्या भावना है। भावनाएं स्वार्थ की है और मनसा सेवा करने जा रहे हैं, ये मनसा बाबा कहता है कभी भी सेवा नहीं करती, ऐसी सेवा नहीं चाहिए। आपका मन बहुत स्वच्छ है, पवित्र है, एकाग्र है, बाबा की किरणों को लो। आप देखो सूर्य की किरणों को एक अच्छे साफ स्वच्छ कांच पर लेते हैं और वो सूर्य की किरणें जब कांच के ऊपर आती हैं और कांच के द्वारा वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो एनर्जी पैदा होती है, सोलार बन जाते हैं, सोलार एनर्जी है, और एनर्जी से बहुत कार्य होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य, भोजन बनता है, लाइटें जलती हैं, आज माइक चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, सोलार एनर्जी काम आ रही है। लेकिन एनर्जी लेने की विधि ठीक ना हो, कहीं सोलार तो सूर्य तो बहुत तेज है, बहुत गर्मी है, लेकिन कहीं हमारे पास एनर्जी तो आती नहीं है। एनर्जी लेने की विधि है, उसको एकाग्र करने की विधि है, कांच स्वच्छ हो, साफ हो। चलो अच्छा, स्वच्छ कांच पर बाबा की एनर्जी लो। कोई भी कर्म करते हुए बाबा की याद रहे, मनसा सेवा में भी बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहे, बाबा की शक्तियां किरणों के रूप में जैसे मुझ आत्मा पर आ रही हैं, यह आत्मा रूपी कांच बहुत साफ है, स्वच्छ है, किसी के प्रति न स्वार्थ है, न ईर्ष्या है, न घृणा है, बहुत शुभ भावना संपन्न हमारे संकल्प हैं, बहुत पवित्र मन से, सच्चे दिल से अगर हम किसी के प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं और बाबा की शक्तियों को स्वयं पर स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो वही शक्तियां रिफ्लेक्ट होकर के सामने वाली आत्मा के संस्कारों को, उनके बुद्धि को परिवर्तन करती हैं। ये मनसा सेवा है। तो ऐसी मनसा सेवा करने के लिए भी बाबा की याद है, ये भी एक कर्म ही है। हम वाचा सेवा कर रहे हैं, हम ज्ञान दान बहुत दे रहे हैं, तो आज बाबा कह रहे हैं कई बच्चे बहुत तिक तिक करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक एक बात को खुलते बताते रहते हैं, जो कहना चाहता है वो भाव उसमें मिक्स हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता है कहना क्या चाहते हैं। इसलिए बोल भी ऐसे हों जिसमें कोई रहस्य, कुछ राज भरे हुए हों, ऐसे नहीं बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और सामने वाला और भारी हो रहा सुनने की बजाय, डिस्टर्ब हो रहा है। वाचा सेवा के लिए भी बहुत अटेंशन चाहिए। जो कुछ अनुभव में आई हुई बातें हैं, जो कुछ हमने प्राप्तियां बाबा से की हैं, जो ज्ञान धन हमें मिला है, उसका अगर हमने मनन किया है, चिंतन किया है, फिर हम वर्णन करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे नहीं हम दूसरों को कह रहे हैं और हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं और हम दूसरों को सुना रहे हैं, तो ऐसे हो गए जैसे पंडित जी की कहानी बाबा सुनाते हैं बड़े रमणीकता से। ऐसे पंडित जी तो नहीं बनेंगे ना, हमने अनुभव ही नहीं किया कि मैं आत्मा हूं, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं बाबा के बहुत बहुत प्यारा लाड़ला बच्चा हूँ, अगर अनुभव ही नहीं है, सिर्फ हाँ बाबा है मेरा कहते हैं, अनुभव नहीं है, तो अनुभव की बिना अगर कोई बात कही जाती है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए वाचा सेवा करो, लेकिन वाचा में बहुत अच्छा अनुभव समाया हुआ हो, बाबा को साथी बना करके जब भी कोई बात कहो तो ऐसे लगे जैसे बाबा ने मुझे इस बात का अनुभव कराया है, बाबा मेरे साथ है। बाबा कहता बच्चे तुम अच्छे माइक बन जाओ, मैं माइट दे दूंगा, मैं शक्ति दे दूंगा। तो माइट बन करके बैठो, माइक बन करके बैठो और माइट ले लो बाबा से, फिर बोलो तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये भी एक कर्म योग है। और कोई भी कर्म हाथों से कर रहे हैं, अधिकतर मैंने देखा है अपने बड़ों को, हमारे दादा विश्व रतन थे, कर्मयोगी जीवन थी उनकी, और कर्मयोगी जीवन में लास्ट दिन तक भी बहुत एक्यूरेट कर्म किया उन्होंने, अकाउंट संभालते थे, लास्ट में उनको अकाउंट की सेवा मिली थी। पहले तो हमारे साथ ही ऑलराउंड सेवाधारी थे, धोबी घाट में भी मदद करते थे, रोटियां बनाने में भी मदद करते थे, हर कार्य में एक्यूरेट थे। बाबा ने उनको हर एक डिग्री दे दी, डॉक्टर भी बना दिया, इंजेक्शन भी वही लगाते, दवाई भी वो देते, सब प्रकार की सेवाएं करते थे, लेकिन स्थिति इतनी स्थिर एकाग्र, जो कहीं पर भी मैंपन नहीं दिखाई दिया, कहीं जोश नहीं दिखाई दिया, मैं करता हूं मैं क्यूरेट हूं नहीं, बहुत निर्माणता से बाबा के कार्य की हर प्रकार की सेवा उन्होंने की, संभाला, लेकिन कहीं भी मैंपन का अंश नहीं आया। निमित्त हूं, बाबा करा रहा, दादियों ने कहा है, बड़ों ने कहा है, हमें करना है, और इतने निर्माण बन करके कर्मयोगी बन करके रहे। लास्ट में कौन सा कर्म था जो अंतमति सुगति हुई, बताया आपको, किसको मालूम है? दादा लास्ट में शांतिवन में रहते थे, शाम को मिले हमको, डायमंड हॉल का चक्कर लगाया और शाम को गए योग करके कमरे में, भोजन सामने आया और भोजन ऐसे खाते 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 ऐसे अंदर लिया और चले। ये भी कर्म था, अंतमति सोगति, बाबा की याद में गिट्टी लिया और अंदर डाली और ऐसे अचके आई और चले गए। तो बाबा जो कहता अंतमति सोगति, मन अंतिम समय में बाबा ही याद रहे, मेरे भोजन सामने था लेकिन याद तो बाबा की थी, बाबा की याद में ऐसे खा रहे थे। तो हम सब कर्म कोई भी करें, लेकिन ये स्मृति रहे कि करावनहार बाबा है, खिलाने वाला बाबा है, चलाने वाला बाबा है, उसकी ही यज्ञ का हम खा रहे हैं, उसके द्वारा ही हम सबका जीवन इतना श्रेष्ठ बना है। तो अगर बाबा की स्मृति निरंतर कर्म में बनी रहती है तो कर्म तो कोई भी किया जाए, छोटा बड़ा कर्म नहीं है, लेकिन कर्म में बाबा की स्मृति सदा बनी हुई है। बाबा ने लास्ट दिन क्या क्या कर्म किए, लिस्ट है हमारे पास। बाबा सवेरे उठ करके सबसे पहले मुरली सुनाते थे, लेकिन उस दिन बहुत ठंडी थी, बाबा को खांसी थी, तो दादी ने कहा नहीं बाबा आज आप नहीं सुनाएंगे, रोज सुनाते थे, आज आप नहीं सुनाएंगे, आज आपकी जगह पर मैं क्लास करा के आती हूँ। बाबा को कमरे में रजाई बिठा करके बिठा दिया, रजाई उड़ा करके। जब मुरली क्लास पूरा हुई और दादी आई बाबा से फिर मिलने, अरे बच्ची कुछ नहीं है, चलो चलो, बहुत पत्र आए हैं बच्चों के, अभी उत्तर देना है सब पत्रों का। बाबा ने सारे पत्र सुने और उस दिन शायद 40-45 पत्र थे, सबका जवाब दिया, खुद लिखा लाल पेंसिल से, सामने बैठ करके यीशु दादी सुनाती गई और बाबा पत्र लिखते गए, सबको जवाब दिया, पत्र का कारोबार पूरा किया। फिर बच्ची चलो तुमको बताते हैं कहाँ क्या बन रहा है, मकान कहाँ बन रहे हैं, बाबा की क्या आगे की भविष्य प्लानिंग क्या है। दादी को ये नहीं पता था बाबा आज मुझे सब क्यों गाइड कर रहा है, उनको क्या पता ट्रांसफर हो रहा है, बाबा को अव्यक्त होना है। लेकिन कर्म का लास्ट दिन भी संन्यास नहीं किया, छोड़ा नहीं, बिस्तर पर नहीं रहे, सबको दिखाया मकान बन रहा है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, यहाँ पर बच्चियाँ आके रहेंगी, इनकी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पर उनको संभालने वाले इंद्रप्रस्थ बन रहा है, ये बनेगा। हम बाबा ने पूरा गाइड किया दादी को, और जो करने वाले थे उनका ही परिचय कराया, ये मिस्त्री है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये नौकर, सबके साथ मिलाया दादी को, टोली खिलवाई दादी से। और बाद में भंडारे में जाके भंडारे वालों का परिचय कराया, सब देखा बताया। और शाम के समय कहते बच्चे आज मुरली नहीं सुनाई ना, बच्चों को भोजन नहीं दिया है बाबा ने, आज खिल भोजन नहीं दिया, मुरली नहीं सुनाई, चलो जल्दी बुला लो बच्चों को। मुरली सुनाई, और मुरली सुनाने के बाद विदाई लेकर के कमरे में आकर के अंतमती सोगती चला गया, उड़ गया पंछी दादी को हाथ में हाथ दे करके। तो आप समझ सकते हो ये कर्म योगी जीवन क्या होती है, कितने श्रेष्ठ कर्म। कर्म का त्याग नहीं है, कर्म कोई भी कर रहे हैं लेकिन बाबा की याद में कर रहे हैं। फिर बाबा के शरीर छूने के बाद 3-4 दिन के बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला, जाओ बच्चे अपने शरीर छोड़ने का अनुभव सुना के आओ। अब ब्रह्मा बाबा आए, गुजर दादी के तन में प्रवेश हुए, फिर अनुभव सुनाया है कि कैसे कर्म भोग पर कर्म योग ने विजय प्राप्त की। और बड़ा वंडरफुल अनुभव है कि कितना कर्म भोग था लेकिन कहीं पर भी कोई महसूसता न हो, कोई ये न समझे कि आज भोगना है, कोई तकलीफ है बाबा को, इतना कर्म योग था। और उस कर्म योग में बाबा के साथ रह करके सब कर्म किया और करके कर्मातीत बन गया, अंतमति सोगति हो गई। हम सबको भी बाबा को फॉलो करना है ना, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और ब्रह्मा बाबा ने कभी भी कोई भी कर्म किया, किसी भी मुरली में ये नहीं आपने सुना होगा कि मैंने बच्चों को सुनाया, मैंने ये किया है। बच्चे इस देहधारी को नहीं याद करना, इसने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं करता, इससे तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, शिव बाबा से मिले उसको याद करना, उसके महावाक्य सुन रहे हो। कर्तापन का कहीं अंश मात्र भी बाबा की मुरलियों में दिखाई नहीं दिया। और बिना कर्म के तो श्री नारायण नहीं बना, नर ऐसे करनी करे जो श्री नारायण बने। अब ऐसी करनी की है तब तो श्री नारायण बने हैं, लेकिन क्या करनी की है कहीं किसी भी करनी का वर्णन नहीं किया। नहीं तो आप शुरू से ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ो, देखो कैसे करनी किया, श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता। एक धक से अपने बिजनेस को समेटा, जो कुछ उससे प्रॉपर्टी मिली, जो भी बंटवारे में आया, पार्टनर के साथ बिजनेस था, एक धक से समर्पित कर दिया कन्या माताओं के आगे। और करने के बाद ये नहीं कहा कि मैंने इतना किया फिर उसका क्या किया, तुमने कहाँ गया हो। 14 साल तक बाबा की और एक दो भाई और समर्पित हुए, सब कुछ सेवा में लगाया, लेकिन कहीं पर भी नाम नहीं किया, अपने लौकिक का भी नाम नहीं डाला। आप वंडरफुल देखेंगे लिस्ट, जब ओम मंडली की स्थापना हुई है 1937 में, 7 बहनों का नाम है उसमें, और 7 में 2 तो दादियां बहुत अनन्य, बाबा की खुद की बेटियां और बहुत ही निर्मल शांता दादी और ब्रजेंद्रा दादी, बाबा की लौकिक में, और इतना अनन्य बच्चे, लास्ट तक भी वो महारथी बड़े घर की, बड़े इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की परदादी कहलाई निर्मल शांता दादी। लेकिन ट्रस्ट के अंदर बाबा ने लौकिक का किसी का नाम नहीं दिया। 7 बहनें अलग, मेरी दादी प्रकाशमणि थी, दादी शांतामणि थी, मम्मा हेडी थी, ओम मंडली ओम राधे के नाम से ट्रस्ट बना था, दीदी मनमोहिनी थी, एक रुक्मणी माता थी, एक शांतामणि दादी की और एक बहन थी। 7 बहनों का ट्रस्ट बनाया और उसमें कोई एक लौकिक का नाम नहीं, और सब कुछ समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद एक बार भी नहीं सोचा कि ये सारा पैसा जो इतना हमने दिया वो कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे लग रहा है, नहीं, ये ओम मंडली ओम राधे देखेगी। आप समझ सकते हो कितना निमित्त भाव और कितना निर्माण भाव होगा। अब योगी जीवन माना क्या है, योग लगाने वाले क्या, ये जीवन है उनकी योगी, कि हम सब इतना निमित्त हो करके कर्म करें, जो कुछ बाबा के कार्य में हमारा लगे। ब्रह्मा बाबा का एक शुरू से पाठ था, इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान महापुण्य कहलाता है। तो गुप्त ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा ने किए हैं जो श्री नारायण पद प्राप्त कर लिया। अंतमति सो गति इसको कहा जाता है, कि किसी भी कर्म का भी नशा नहीं था कि मैं कर रहा हूं या मैंने किया है, मैं नहीं करता तो कोई नहीं कर सकता। कभी भी बाबा को कोई ने नाम लिया, बाबा आपने बहुत अच्छा किया, बाबा कहता था बच्चे भूल गए तुम, मैंने क्या किया, बाबा ने किया, बाबा कर रहा है, वो कराने वाला है, इसकी क्या हैसियत थी। लेकिन इसके बिना तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। फिर भी ब्रह्मा बाबा कहीं पर भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। चलो ब्रह्मा बाबा को हमने भी नहीं देखा साकार में, थे लेकिन हमने भी पालना नहीं ली। हमने दादी जी को तो प्रैक्टिकल देखा। दादी जी, दादी प्रकाशमणि इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी। जितना भी आप विस्तार देख रहे हैं, जो भी वर्णन सुन रहे थे, मैंने तो एक एक चीज अपनी आंखों से देखी। 50 साल के अंदर जो वृद्धि हुई है, सेवाओं की वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, इतना सब कुछ करने में सबसे नंबर आगे दादी रही। कुछ भी संकल्प आता था, बाबा ने मुझे आज ये कहा, बाबा ने आज मुझे ये कहा, तो बस बाबा का नाम लिया और ये सब काम शुरू किया। इतना बड़ा ओम शांति भवन बनाया। ओम शांति भवन बना, दादी जी को आया, इसका उद्घाटन हम बहुत बड़े बड़े VIP से कराए। यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल को बुलाया, कई VIP जाए 83 में। मकान अभी तैयार नहीं हुआ, एक दीवार नहीं बनी है और डेट फिक्स कर दिया उद्घाटन की। दिसंबर में ओम शांति भवन की कैंची भी नहीं पड़ी थी, दीवार भी नहीं बनी थी, और फरवरी में उद्घाटन है 8 फरवरी। आप समझ सकते हो क्या उनका उमंग होगा, कैसा उत्साह होगा, और कैसे उन्होंने सबके अंदर बल भरा, जोश भरा। पैसा नहीं है, नौकर नहीं है, कोई ऐसे करने वाले इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन सब मधुबन वाले करेंगे, सब करेंगे, हम सब करेंगे। और बल भर के उमंग उत्साह दिला दिला करके समय पर मकान तैयार हो गया, ओम शांति भवन बना, उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। और उद्घाटन में कहा हमको 3000 का हाल हमने बनाया तो 3000 लोग ब्राह्मण आने चाहिए। 3000 ब्राह्मण आएंगे तो रहेंगे कहाँ? उस समय तो न सुखधाम था, विज्ञान भवन बन गया था, सुखधाम भी नहीं बना था। ये बिल्डिंग तो छोड़ो, बात की बातें हैं, शांतिवन ज्ञान सरोवर तो बहुत बाद में बना है। लेकिन दादी जी को हुआ कि हमको इस हाल को छोटा करना है, पहले इतने सब ब्राह्मण आए, और जब आए तो सारे आबू के होटल बुक कर लिए फुल, एक भी बाहर वाला नहीं आबू में आ सकता था। कोई धर्मशाला, कोई होटल नहीं छोड़ी, और सबकी संभाल में, सबकी सेवा में हम लोगों को भेज दिया। जा उनको गर्म पानी देना, उनकी व्यवस्था करना, उनके बिस्तर ठीक करना, हम सब सेवा पर थे मधुबन वाले। 3000 लोगों का पूरा ही प्रबंध हम लोगों ने होटल में किया, और जब गए तो उसके बिल भुगतान किए। लास्ट में दादी कहती है, तुम लोगों को पता है ये बाबा जो है ना बड़ा चतुर है। क्यों चतुर बोला होगा मालूम है? क्यों बोला चतुर है? कहता है जितना खर्चा हुआ ना उतना ही दिया, एक पैसा ना कम आया ना एक ज्यादा आया। आप समझ सकते हो उस समय बेगरी पार्ट था, ऐसा कोई थोड़ी साहूकारी थी, इतना कोई बाबा के बच्चे थे, किसी ने जमीन दे दिया, किसी ने ऐसे तन मन लगा के मकान बना दिया, और इतना बड़ा कार्यक्रम करके। लेकिन कितनी स्मृति थी कि कराने वाला वो है, हम तो निमित्त हैं, उसका कार्य है अपने आप कराएगा। तो ऐसे बाबा को साथ लेकर के कर्म योगी बन करके कर्म किए, ज्ञान सरोवर बनाया। उमंग उत्साह कितना था इस ज्ञान सरोवर की कहानी अगर आप सुनाएंगे तो 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा आपको। बाबा ने कैसे टच किया, एक दिन की बात सुना देता हूं, ज्यादा विस्तार नहीं बताता हूं। एक यहां पर साधु थे, संत, बड़े गौमुख में रहते थे, गौमुख के नीचे, नीचे वाले नहीं ऊपर जो गौमुख का आश्रम बना हुआ है, वो संत बड़े भावना वाले, बाबा से बहुत प्यार था, दादी से, यज्ञ से भी प्यार था। वो करीब 109 या 10 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा है। काफी बड़ी उम्र थी, एक दिन बीमार पड़े, फोन किया, दादी को डायरेक्ट फोन कर देते थे, दादी मैं आज बीमार हो गया हूं, आप डॉक्टर भेज दो। तो दादी ने डॉक्टर भेजा, हमारे पास जो थे बनारसी भाई वगैरह को कहा जाओ। उन्होंने देखा कि भाई ये तो ज्यादा तबीयत खराब है, उनको कहा महात्मा जी आपको अहमदाबाद ले चले। बोला हाँ ले चलो। अहमदाबाद में उसका ऑपरेशन करवाया, हर्निया वगैरह ही था, कुछ तकलीफ ज्यादा थी। ऑपरेशन हुआ, अब वो डरता था पहले ऑपरेशन इतनी बड़ी उम्र में कराने में। अब वो जब उसको ऑपरेशन के लिए तैयार किया तो ब्रह्मा बाबा ने उसको अपना अनुभव करा दिया, बच्चे तुम डरो मत, डॉक्टर हाथ चलाएगा, मैं ऑपरेशन करूंगा। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ उसको, और ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, उसने ऑपरेशन करवा लिया, आया ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद उसको संकल्प आया, सारी जमीन जो है ना बाबा को दे दूं। 38 बीघा थी, 38 एकड़ थी, और उसने ऑफर कर दिया ऐसे ही, और कागज आगज सब निकाले, सब दे दिया भाइयों को कि दे जाओ, लिखा पढ़ी करा लो। लेकिन दादी इतनी पक्की थी कि नहीं, बाबा जब तक छुट्टी नहीं देगा तब तक हम नहीं लेंगे, पहले बाबा से पूछो। बाबा से पूछा, बाबा को बुलाया, हम सब ऐसे सामने 10-12 भाई बैठे थे। बाबा ने कहा बच्चे ये सन्यासी की जमीन बाबा को नहीं चाहिए, कागज वापस कर दो। बहुत समझाने की कोशिश की बाबा को हम लोगों ने, बाबा ये तो फ्री दे रहा है, आपने तो साक्षात्कार कराया है, बच्चे सन्यासी की जमीन बाबा को नहीं चाहिए, वापस कर दो। बाबा की बात तो टाल नहीं सकते ना, दूसरे दिन कागज सारे वापस कर दिया। जब वापस किया तो उसको बड़ा आया कि दादियां शायद भाई ये संस्था वाले डर रहे होंगे। अरे आप डरो नहीं, हम आपके साथ हैं, बंदूक है मेरे पास, कुछ भी नहीं होगा, ये होगा वो होगा। दादी ने कहा नहीं, बड़ों ने मना किया है, हम नहीं ले सकते। चलो वो बात तो पूरी हो गई, नहीं लिया। एक दिन बाबा आए थे, सुबह विदाई लेने लगे, ऐसे आंख बंद किया, फिर आ गए वापस, और दादी को बोलते इधर आओ। दादी जी को बुलाया, कहते इधर है ना दूध वाले जो आते हैं ना, उनसे बात करना, वहां जमीन है। सुबह 6 बजे बाबा विदाई लेते समय दादी के कान में बोले, और 9 बजे दूध वाला दूध लेकर के आया पांडव भवन में, और बोलता है कि कुछ जमीन अमीन चाहिए तो बताना, मेरे पास पड़ी है एक बहुत बड़ी जमीन है। दादी आई, दादी ने कहा अरे ये तो बाबा ने आज सवेरे ही बोला था, देख के आओ। अब ये देखने आए तो यहाँ पर पूरा चरागाह और एकदम पहाड़ियां और जंगल, फिर भी बाबा ने कहा है ले लो, बहुत सस्ते दाम में ले लिया, दे दिया उन्होंने प्यार से, बहुत प्यार से सबने मिल करके दिया, हम लोगों के नाम से ले ली गई। फिर उसके बाद बनेगी कैसे, फिर बनाने के लिए बड़े नक्शे नहीं पास हों, ये नहीं हो वो नहीं हो, चन्ना रेड्डी जी के पावर आई हाथ में, और उन्होंने बाबा के बच्चे थे वो, बहुत से नहीं थे, उन्होंने सब नक्शा पास कराया, मकान बन गया, उद्घाटन किया, उसके बाद ट्रांसफर हो गए वो। बाबा करण करावनहार है, करा रहा है, दादियां सिर्फ निमित्त बन करके इतनी निर्माणता से, बाबा साथ है, बाबा कराने वाला है, और उसकी स्मृति के आधार, ये कर्म योग है, हमने किया, मैं कर रहा हूं, दादी कहे मैंने ज्ञान सरोवर बनवा दिया, मैंने शांति वन बनवा दिया, वहां मैं पन आया, वहां योग टूट जाएगा। योग यही है कि हम कोई भी कर्म करें लेकिन एक निमित्त भाव से कराने वाला बाबा है, उसका ये कार्य है, उसकी स्थापना है, कहीं मैं पन ना आए लास्ट तक भी। दादी की एक बात मैं आपको सुनाता हूं कि एक दिन ऐसे 2-3 साल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, ऊपर नहीं आती थी, तो ऐसे बैठी थी, अचानक मैं पहुंच गया ऊपर से, अकेले में बैठे थे। दादी कहती है तुम कहां से आए, हमने कहा पांडव भवन से आया हूं। अच्छा पांडव भवन से आए, सब ठीक है वहां पर, हमने हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा ज्ञान सरोवर ठीक है, हमने कहा हाँ ज्ञान सरोवर भी बिल्कुल ठीक है। अब सब सब बातें बोली पूछती गई, और हमने सब में कहा हाँ दादी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरे को देख कर कहती सब कैसे अच्छा चल रहा है कैसे, तो मैंने क्या जवाब दिया पता, मैंने कहा दादी आपके शुभ संकल्पों से सारी कारोबार अच्छे चल रही है। अब जब मैंने ये शब्द यूज किया ना, आपके शुभ संकल्पों से सारी कारोबार बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे ऐसा समय आएगा जो सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्पों से चलेगी, कोई कहेगा नहीं किसी को। अभी वही समय आ गया, कोई कहेगा नहीं किसी को, लेकिन बाबा के शुभ संकल्पों से कारोबार चल रही है। तो मैंने दादी का, दादी आपके शुभ संकल्पों से सारी कारोबार अच्छी चल रही है, तो मेरे को रोक दिया, ठहर, क्या बोला? फिर मैंने रिपीट किया, कहती है मुट्ठा तुम क्या कहता है, मेरे संकल्पों से नहीं चल रही है, बाबा के संकल्पों से चल रही है, ये बाबा का कार्य है, तुम भूलना नहीं। आज लोग आके कहते हैं दादियां चली गई, फलाना चला गया, अब कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, जो अल्पज्ञ बुद्धि है ना आजकल ये प्रश्न करते हैं, उनको पता नहीं कार्य किसका है, करण करावन हार कौन है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, प्रत्यक्षता नहीं हुई है, तब तक ये कार्य बीच में रुक जाएगा क्या? कोई भी चला जाए, शरीरधारी तो आ जाए, जाएंगे ही कल, किसी के द्वारा कार्य रुकेगा नहीं, किसी के आने जाने से। करावन हार बाबा है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, उसको इतनी बच्चों की नई सृष्टि की स्थापना करनी है, इसलिए जब तक नई सृष्टि का आगमन नहीं होता है, कलयुगी सृष्टि का जाना नहीं हुआ, तब तक कुछ भी हो जाए नीचे ऊपर, लेकिन शिव बाबा का कार्य दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना बढ़ना ही है, और बढ़ रहा है, देख लो वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है। लॉकडाउन के अंदर कितने बच्चे बाबा के पैदा हुए हैं, गुप्त रीति से निकले हैं, कोर्स किया है, ज्ञान में चल गए, मुरली में पहुंच गए, उनको पता ही नहीं बाबा और मधुबन क्या है, ऐसे बच्चे निकले हैं ना। तो वर्तमान समय बाबा की ये बहुत गुप्त प्रभु लीला चल रही है, और उस लीला को पहचानो और सहयोगी बन जाओ, जो आपका तन मन धन समय है बाबा के कार्य में सफल हो जाए, और बहुत काल तक ये स्मृति में रहे कि कराने वाला करा रहा है, मैं तो उसका निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट हूं, जो कार्य कराना है करा ले, ये है कर्मयोगी स्टेज, और ये कर्मयोगी स्टेज अगर है और शरीर ऐसे छूटेगा तो अंतमति सोगति, अंतिम समय में बाबा की याद बनी रहे, और उसके लिए हमें बहुत काल तक ये स्मृति रहे कि ये कराने वाले के कर्म बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य स्थापना का जो बाबा का है चल रहा है, होना ही है, उसको कराना ही है, हम अगर निमित्त बन जाएंगे तो मेरा भाग्य है। इसलिए निमित्त बन करके जो शक्ति है किसी से पूछने की जरूरत नहीं, श्रेष्ठ कर्म के लिए किसी के राय लेने की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प आए, शुभ संकल्प आए, बाबा के कार्य में ये मैं सफल कर लूं, चुपचाप कर लेना, पूछोगे तो पूछ लग जाएगी। तन की शक्ति है लगा दो, मन की शक्ति है मन मनाओ, शुभ भावना रखो, धन की शक्ति है कहीं ना कहीं बाबा के श्रेष्ठ कार्य में लग जाए, जितनी आत्माओं को वहां से लाभ मिलेगा उसका सबका शेयर करने वाले को मिल जाएगा। ये श्रेष्ठ कर्म है, और ये श्रेष्ठ कर्म करने से कराने वाला बाबा अपने आप याद आएगा, ये कर्म योगी स्टेज है, और ऐसी कर्म योगी स्टेज में जो आत्माएं रहती हैं, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, उसके हम बच्चे हैं, उसके हम राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहे, वो मुझसे कराए, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या ताकत है, मेरा बायोडेटा पढ़ा जाता मैं खुश हो जाऊं, बाबा ने ऐसा बनाया है ना, हम कहां से आ गए, कहां से सीख के आए। अगर बाबा में हमारा संपूर्ण विश्वास है, इस निश्चय के आधार से हम सब कर रहे हैं, तो उसके सिवाय और कोई नहीं है। चालाकी नहीं करना, कई लोग बड़े चालाक होते हैं, कहते हैं, एक सेठ जी की बात सुनाता हूं, बहुत चालाक थे, कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो सुनते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, नाम का ही कलयुग के अंत में महत्व होता है, नाम से ही गति सदगति हो जाएगी, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने तीन बेटे हुए तीनों का नाम भगवान के नाम पर रख लिया, कि अंत में वही तो याद आते हैं, तो एक का नाम रखा मोहन, एक का नाम रखा राम, एक का नाम रखा कृष्ण, तीन बच्चे हुए, तीनों को पाला पोसा बड़ा किया और अंदर से ये विश्वास था कि जब अंतकाल आएगा ना तो राम की अगर याद आई या कृष्ण की याद आई तो भगवान का नाम हो गया, बच्चे ही याद आएंगे और याद आते ही भगवान की याद में शरीर छूटेगा, अंतमति सुगति हो जाएगी। बड़ी चालाकी से चल रहे थे, खुश हो रहे थे, बड़े होते गए बच्चे। जब उनका अंत समय आया तो बिस्तर पर थे और बिस्तर पर ऐसे ही राम राम कह रहे थे, याद किया राम कहाँ है, तो राम आ गया बेटा सामने। अच्छा कृष्ण कहाँ है, वो भी आ गया। मोहन कहाँ है, वो भी आ गया। तीनों सामने आ गए। अब जब तीनों सामने आ गए तो उसको ये संकल्प आया कि सब तीनों यहां खड़े हैं तो दुकान पर कौन होगा। तो बहुत जोर से गुस्से में बोलता है, तुम यहां तीनों खड़े हो तो दुकान पर कौन है, और ऐसा कहते ही उसके प्राण निकल गए। क्या हुआ, अंतमति सुगति। तीनों सामने हैं, राम भी है कृष्ण भी है, लेकिन कोई का नाम याद नहीं रहा, याद आई दुकान, और दुकान याद आते ही प्राण निकल गए। फिर क्या हुआ, अंतमति सुगति, बेचारा भटक गया दुकान में जाके। हम सबको बाबा कहता है, बच्चे देखना, दुकान मकान धंधा धोरी बिजनेस इसमें नहीं लगे रहना, बहुत काल से जिसकी स्मृति में रहोगे वही अंत समय में याद आएगा। इसलिए कर्म की मना नहीं है, कर्म करो, लेकिन बाबा कराने वाला है। मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं, निमित्त उसने मुझे बनाया है, जो कार्य किया है कर लो और जो फल की इच्छा नहीं रखो, बाबा कहता कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं रखो, कर्म भी समर्पण कर दो, बाबा आपने करा लिया। उस दिन बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करो लेकिन प्रारब्ध की कामना रख करके पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध तो बनती नहीं है। प्रारब्ध अगर कोई को बनी हुई है, मिल रही है, तो उससे भेंट नहीं करो, इसकी ऐसी प्रारब्ध क्यों है, जरूर कभी तो उसने कुछ किया होगा, तब तो उसका रिटर्न उसको मिल रहा है। तो हम सब गुप्त रीति से बहुत अंदर जाकर के बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं, कर्मयोगी बन करके रहें। जो शक्ति है, जिसके पास जिस प्रकार की है, चेकिंग करना, जिस प्रकार की मेरे पास शक्ति है वो बाबा के काम में लग जाए बस, और लगाओ, लगाते हुए भी ये ध्यान रहे, कराने वाला वो है, मैं कुछ नहीं करता। जब मैंपन मिट जाएगा तब बाबा की याद स्थायी रहेगी, और स्थायी याद जिसके अंदर है, घट घट में, जैसे बाबा व्यापक नहीं इन घट घट में याद है, हर पल याद है, बाबा 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 का अनहद अंदर से नाम चल रहा है, कर्म हाथों से हो रहा है और दिल में बाबा की स्मृति है। तो जहां पर प्राप्तियां हैं, जहां पर स्नेह है, जहां पर बहुत दिल का प्यार है, वहां पर याद स्थायी रह सकती है, और कर्म में याद स्थायी है तो शरीर जाएगा तो भले जाएगा, अंतमति सुगति हो जाएगी, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, अच्छी पद, और जो बाबा चाहता है मेरे बच्चों को प्राप्ति हो वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इस कलयुग के अंत में कर्म श्रेष्ठ हो, कर्म का बंधन न बने, कर्म बोझ न बने, कर्म करो, संबंध निभाओ, लेकिन न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रख करके करो। कमल फूल के समान, जैसे कीचड़ पानी में है लेकिन कीचड़ और पानी से न्यारा है, ऐसे कर्म करने वाली आत्मा ही कर्मयोगी है, और कर्मयोगी आत्मा है जो कभी भी किसी बंधन में, किसी संबंध में, किसी कर्म बंधती नहीं है, वही आत्माएं गति और सदगति को प्राप्त कर सकती है। इसलिए अंतिम समय में सदा एक स्मृति बनी रहे, किसी घड़ी भी शरीर का अंत हो सकता है। कभी कोई कोई कहते हैं विनाश में कितने साल लगेंगे, और कोई कोई यहां डेट बता रहे हैं, और बाबा कहते हैं डेथ की डेट नहीं बताई जाती है। इसलिए डेट कॉन्शियस नहीं बनना, सोल कॉन्शियस बनो। कलयुग का, सृष्टि का विनाश जब होना होगा होगा, हमारा तो कभी भी हो सकता है। इसलिए जब हम अंत घड़ी के समीप पहुंचे हुए हैं तो हम 4 साल 5 साल 10 साल की गिनती क्यों कर रहे हैं और क्यों करा रहे हैं लोगों को, वो मेरी समझ में नहीं आता। जब बाबा ने ही डेट नहीं बताई है तो हम आत्माएं कौन हैं जो हम दूसरों को डेट बता रही हैं। इस पर अटेंशन देना। कोई कुछ भी कहे 35 में 36 में कब हो जाएगा, बाबा कहता है तुम कब कब करते काल न खा जाए ध्यान रखना। इसलिए हम सब अंतिम समय में बैठे हैं और अंतिम समय में बस यही ध्यान रहे, जैसे मम्मा की बुद्धि में हर घड़ी याद रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। उन्होंने कभी भी बाबा को अपने से दूर नहीं किया, बाबा 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 कहते हुए बाबा के हाथ में हाथ देते अंत में बाबा की गोदी में गए। हम सब बाबा के बच्चे इसी स्मृति में रहें कि कलयुग का अंत तो जब होना होगा होगा, उसका परिवर्तन तो बाबा जाने, लेकिन मुझ आत्मा को अपनी इस स्मृति से अपना तन मन धन सफल करना है। कहीं पर भी लगाव झुकाव प्रभाव दबाव, कहीं पर भी अटैचमेंट ना हो, किसी के साथ विशेष स्नेह हो गया, सेवा से स्नेह हो गया, संबंधों से स्नेह हो गया, व्यक्तियों से स्नेह हो गया या किसी वस्तुओं से हो गया, तो अंत समय जब आएगा तो बुद्धि उधर ही भटक जाएगी, गति नहीं होगी। इसलिए बाबा कहता पहले से ही सब कुछ समेट लो और विस्तार को समेट करके बाबा करण करावनहार, जो करा रहा है कर लो, करते चलो अच्छे कर्म, और अच्छे कर्मों के रिजल्ट आपका योग बाबा के साथ जुटा रहेगा, और जब समय आएगा शरीर से आत्मा जाएगी उसकी गति सदगति हो जाएगी। पूछने की कहने की जरूरत नहीं है, जीते जी जितना जो कुछ बाबा ने दिया है सदा यही ध्यान रखो ये सब सफल हो जाए, कुछ भी निष्फल ना हो, कोई भी चीज ऐसे ना हो तो दबी रहे, जो बाबा कहता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए, किनकी जलाएगी आग, लेकिन बाबा के बच्चों की सब सफल हो जाए। परमात्मा के नाम पर, बाबा के नाम पर, बाबा जो आपने दिया सब आपके काम में सफल हो जाए, तब निश्चिंत रहोगे और निश्चिंत स्थिति में जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कर्मयोगी बन करके रहना, कर्म करो, कर्म की छुट्टी है, लेकिन कर्तापन का भान ना आए, करो और न्यारे हो जाओ। ऐसी न्यारी प्यारी स्थिति, कमल फूल समान स्थिति कर्मयोगी स्थिति है, और यही कर्मयोगी स्थिति हमको कर्मातीत बनाएगी और हमारी अंतकाल सुहानी हो जाएगी। ओम शांति।